ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पात्र रविवार 28 अप्रैल 2019 के लिए है। विषय: मौत के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ: भजन संहिता। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। उत्तरदायी अध्ययन: भजन संहिता। यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे कुछ घाटा ना होगा। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कराता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ आया है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सेकति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगाना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, बिनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धार्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बालाहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूँगा। उत्पत्ति। सांझ को वो दो दूत सदूम के पास आए, और लूत सदूम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वो उनको भेंट करने को उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। फिर उन पाहनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे, बेटियाँ और नगर में तेरे जो कोई भी हों, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सामुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इस नगर का सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस स्थान को नाश किए चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा कराने सा जान पड़ा। जब पोप हटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधाम में भस्म हो जाएगा। पर वो विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपने प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना देखना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा, और वो नमक का खंभा बन गई। और लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सौर में रहने से डरता था। इसलिए वो और उसकी दोनों बेटियां एक गुफा में रहने लगे। नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगी, और तू अपनी मार्ग पर निधर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर वीति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा देगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लूका। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यूहन्ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इब्रानियों। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था वो सिथर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। पर हम यीशु को, जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदार का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समाने उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को, नकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्रंतियों। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्ध भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से शरीष्ट होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है तो वो ईश्वर प्रेम और जीवन की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। मौत के संबंध में रोगी के विचारों को बदलकर स्वस्थ के बहाल करने के हजारों उदाहरणों का उल्लेख किया जा सकता है। लेखक ने आशाहीन जीवक बीमारी को ठीक किया है और जीवन और स्वास्थ्य को भगवान की समझ के माध्यम से उठाया है जो कि मर रहा था। ये मानना कि पाप सर्वशक्तिमान और अनंत जीवन पर हावी हो सकता है, ये पाप है और इस जीवन को इस समझ के साथ प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि कोई मृत्यु नहीं है, साथ ही साथ आत्मा के अनेक अनुग्रह द्वारा भी। हालांकि हमें नियंत्रण के अधिक सरल प्रदर्शनों के साथ शुरू करना चाहिए और जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना ही बेहतर है। जब गणवते वंशानी होता है तो उम्मीद हमारी प्रगति को गुत्थी देती है। सत्य के लिए संघर्ष एक को कमज़ोर बनाने की बजाय मजबूत बनाता है, एक को पहनाने की बजाय आराम करता है। यदि मृत्यु में विश्वास तिरोहित हो जाता है और ये समझ प्राप्त हो जाती है मृत्यु नहीं है, तो ये जीवन का वृक्ष होगा जो अपने फलों से जाना जाता है। मनुष्य को अपनी ऊर्जाओं और प्रयासों को नवीनीकृत करना चाहिए और अपने स्वयं के उद्धार के लिए काम करने की आवश्यकता को सीखते हुए पखंड को भी देखना चाहिए। जब ये जान लिया जाता है कि बीमारी जीवन को नष्ट नहीं कर सकती और मृत्यु से पाप या बीमारी से बचाया नहीं जा सकता, तो ये समझ जीवन के नएपन में तब्दील हो जाती है। ये या तो मरने या कब्र से डरने की इच्छा में महारत हासिल करेगा और इस तरह नश्वर अस्तित्व को नष्ट करने वाले महान भय को नष्ट कर देगा। मृत्यु में सभी विश्वासों का त्याग और इसके डंक के डर से स्वस्थ्य और नीतिकता के स्तर को अपने वर्तमान उठान से बहुत ऊपर उठाया जा सकता है और हमें ईश्वर में जीवन के प्रति असीम विश्वास के साथ मसीही धर्म के झंडे को धारण करने में सक्षम करेगा। पाप मौत लाया और पाप के गायब होने के साथ मौत गायब हो जाएगी। हम एक से अधिक सर्वोच्च शासक या भगवान से कम किसी शक्ति में विश्वास करने के लिए परवान हैं। हम कल्पना करते हैं कि मन एक कामुक शरीर में कैद हो सकता है। जब भावतिक शरीर बर्बाद हो गया है, जब बुराई ने सामग्री में जीवन के विश्वास को पलट दिया है और उसे नष्ट कर दिया है, तो नश्वर लोग मानते हैं कि मृत्युहीन सिद्धांत या आत्मा पदार्थ से बच जाती है और जीवित रहती है। पर यह सच नहीं है। मृत्यु जीवन के कदमों के लिए पत्थर नहीं है, परंतु अमरता और आनंद है। ईश्वर यानी ईश्वराई भलाई मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए उसे नहीं मारता, बल्कि ईश्वर ही मनुष्य का जीवन है। भगवान एक बार केंद्र में है, बुराई मर जाती है परंतु अच्छाई नहीं मरती। पीड़ा राहत प्रगति होनी चाहिए जिसमें कला और मृत्यु की बजाय जीवन और शांति हो। यदि मृत्यु नामक परिवर्तन पाप बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के शम में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधार्मी हैं वो अभी भी अधार्मी होंगे जब तक के दिव्य विज्ञान में मसीह यानी सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। अधर्म को छोड़ते हुए जिन पापों को क्षमा किया जाता है, वो खुशी पाप के बीच में वास्तविक हो सकती है कि शरीर की तथाकथित मौत पाप से मुक्त हो जाती है और ये कि भगवान का क्षमा याचना है लेकिन पाप का विनाश होता है। ये गंभीर गलतियां हैं। मनुष्य को ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि मृत्यु के अनुभव में विश्वास उन्हें महिमा प्रदान करेगा। सर्व भावमिक मुक्ति प्रागति और पारिवेक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अपराप्य है। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं। क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। कोई भी अंतम निर्णय नश्वर की प्रतीक्षा नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान का निर्णय दिन प्रति घंटा और लगातार आता है। यहाँ तक कि इस निर्णय के द्वारा नश्वर मनुष्य को सभी भावतिक त्रुटि से विभाजित करता है, आध्यात्मिक त्रुटि के लिए कोई नहीं है। दुख, पाप, मृत्यु, विश्वास असत्य हैं। जब दिव्य विज्ञान को सर्वभावमिक रूप से समझा जाता है तो उनके पास मनुष्य पर कोई शक्ति नहीं होगी। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। पाप, राहत, आनंद, जीवन की पूर्ण सद्भाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना, एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। अस्तित्व की यह स्थिति वैज्ञानिक और शन है। एक पूर्णता केवल उन लोगों द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतम समझ है। मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी नहीं करा सकती, क्योंकि अमृता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा, इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक समझ से सही भावतिक विश्वास और आत्मा आपको नए सिरे से बनाएगी और फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी ना डरेंगे। और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि दिल या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। मृत्यु के सपने के लिए यहाँ या इसके बाद मन से महारत हासिल करनी चाहिए। सत्य इस तुराही शब्द को पकड़ने के लिए अपने स्वयं की सामग्री घोषणा करता है कि कोई मृत्यु नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं है, रोगाग्रस्त क्रिया अतिशायुक्ति और ना ही प्रतिक्रिया है। हम अनंत में सत्य की सर्वचित्ता की हर दिशा में स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए उठ सकते हैं। मृत्यु पर जीवन, बुराई पर अच्छाई, और ये विकास तब तक चलेगा जब तक हम भगवान के विचार की पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते। और कोई और डर नहीं कि हम बीमार होंगे या मर जाएंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। भजन संहिता। यद्यपि ये रास्ता नश्वर अर्थों में अंधेरा है, दिव्य प्रेम और जीवन इसे रोशन करता है। नश्वर विचार की अशांति, मृत्यु का भय और त्रुटि की कथित वास्तविकता को नष्ट करता है। क्रिश्चियन साइंस विरोधाभासी अर्थ घाटी को काली और गुलाब के रूप में खिलाने के लिए है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए तीन दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वर सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर भी शासन कर। उद्देश्यों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के उद्देश्यों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।